जाया गोपी जाना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरावनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 जय राधा वृंदम बिहारी राधा वृंदम बिहारी राधे जय श्री गौरांग श्री गौरांग जय श्री गौरांग जय श्री जय राधा मदन मोहन ललिता देवी राधा मदन मोहन ललिता देवी जय जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभु जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरु हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरों चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये नष्टप्रायोश भद्रेशो नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 9। तद्यत्था बालिश्वानां सयुत्मानः श्रेयः परम विदुषां परम परम पुरुष प्रकर्ष करुणया स्वमहिमानां च पवर्ग्यख्यम् उपकल्पयिष्यायनम् स्वयं न अपचित एवेतर्वदीहोपलक्षितः तद्यत्था बालश्वानां स्वयं आत्मनश्रेयः परम विदुषां परम परम पुरुष प्रकर्ष करुणया स्वमहिमानं च अपवर्ग्यप्यम् उपकल्पयिष्यन् स्वयं शन् स्वयं न अपचित एवेतर्वदीहोपललक्षितः तद्यत्था बालिश्वानां स्वयं आत्मना श्रेयः परम विदुषां परम परम पुरुष प्रकर्ष करुणया स्वमहिमानं च अपवर्ग्यप्यम् उपकल्पयिष्यन् स्वयं न अपचित एवेतरवदिहोपलक्षितः कोई बोल सकते तत् वह यथा जिस प्रकार बालिशानाम मूर्खों का स्वयं स्वयं आत्मनः अपना श्रेयः कल्याण परम परम अविदुषाम अज्ञानियों का परम परम पुरुष हे ईश्वर के भी ईशाधीश प्रकर्ष करुणया प्रभुत अहितुकी करुणावश स्वमहिमानं अपनी व्यक्तिगत महिमा च तथा अपवर्ग आख्याम अपवर्ग मुक्ति कहलाने वाली उपकल्पयिष्यन् देने की इच्छा स्वयं स्वयं न अपचितः समुचित रीत से पूजा न होने से एव यद्यपि इतरवत सामान्य पुरुष की भांति यह यह उपलक्षितः आप है और हमारा द्वारे देखे जा रहे हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। हे ईशाधीश, हम धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के पूर्णतया अनभिज्ञ हैं, क्योंकि हमें जीवन लक्ष्य का ठीक से पता नहीं है। आप यह हमारे समक्ष साक्षात इस प्रकार प्रकट हुए हैं, जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अपनी पूजा कराने के लिए आया है। किंतु ऐसा नहीं है, आप तो इसलिए प्रकट हुए जिससे हम आपके दर्शन कर सके। आप अपने अगाध तथा अहितु की करुणावश हमारा उद्देश्य पूरा करने, हमारा हित करने तथा अपने व्यक्ति महिमा का लाभ हमें प्रदान करने अर्थात अपवर्ग मुक्ति का लाभ प्रदान करने हेतु प्रकट हुए हैं। हम अपनी अज्ञानता के कारण आपकी ठीक से उपासना भी नहीं कर पा रहे, तो भी आप पधारे हैं। तात्पर्य, भगवान श्री विष्णु स्वयं यज्ञस्थली पर उपस्थित हुए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका कोई निजी स्वार्थ था। इस प्रकार मंदिर में अर्चा विग्रह रहता है, मात्र अपने अहितु की करुणा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उपस्थित होते हैं, जिससे हम उनका दर्शन पा सके। हमारे पास दिव्य दृष्टि न होने के कारण हमें श्री भगवान के सच्चित आनंद विग्रह को नहीं देख पा दे सकते हैं। इसलिए अपने अहितु की कृपावश से वे ऐसे रूप में आते हैं जिसे हम देख सकें। हमें पत्थर तथा लकड़ी के समान स्थूल पदार्थ की दिखाई पड़ते, इसलिए वे मंदिर में पत्थर तथा लकड़ी का रूप धारण करके हमारे सेवा स्वीकार करते। यह ईश्वर की अहितु की कृपा का प्रदर्शन है। यद्यपि उनकी ऐसी वस्तुओं के प्रति कोई रुचि नहीं होती, किंतु हमारे प्रेम में सेवा स्वीकार करने के लिए वे ऐसा करते हैं। वास्तव में हम श्री भगवान की पूजा के लिए उपयुक्त सामग्रियों की भेंट चढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि हमें निरे अज्ञानी हैं। मात्र अहितु की कृपा से परमेश्वर महाराज नाभि के यज्ञ स्थल में प्रकट हुए हैं। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुतिदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत स्कंद 5 श्लोक क्रमांक 3। अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 9। तो राजा नाभि की पत्नी मेरी देवू की गर्भ से भगवान ऋषभदेव का जन्म। तो यहां देख रहे कि अग्निद्री का पुत्र है नाभि, उनकी पत्नी मेरु। तो भगवान ऋषभदेव का इनसे जन्म होता है, इनके से प्रकट होते हैं। तो नाभि और पत्नी मेरु से नाभि ने भगवान के पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत यज्ञ करते हैं, अनेक यज्ञ करते हैं। और उस यज्ञ के में भगवान यज्ञ सेवा प्रकट होते हैं। तो उस समय जो यज्ञ कर रहे थे जो पुरोहित, वो पुरोहित की उनकी भगवान की गुणगान स्तुति कर रहे हैं, भगवान कैसे परम पुरुष है वो प्रार्थना कर रहे हैं वहाँ से। तो भगवान ऐसे यज्ञ में प्रकट होते हैं, यज्ञ भी भगवान का है, स्वयं भगवान का ही रूप है। तो भगवान किस किस माध्यम से स्वीकार करते हैं, जैसे यज्ञ से आहुति से भगवान अपना प्रार्थना स्वीकार करते हैं, या भगवान को भोग अर्पण करते हैं भगवान स्वीकार करते हैं। और भगवान विग्रह के रूप में हम जो सेवा करते उसके माध्यम से भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मणों से मुखम आसित कि ब्राह्मण के रूप से हमारे से भोग स्वीकार करते हैं, यज्ञ के द्वारे भगवान भोग स्वीकार करते हैं, या गो ब्राह्मण्य जो गो माता है उनसे भगवान स्वीकार करते हैं। यज्ञ जो है ऐसे भगवान हम यज्ञ जो करते हो भगवान के संतुष्टि के लिए हम यज्ञ करते कि यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोकम कर्म बंधना, कि भगवान विष्णु के संतुष्टि के लिए हम यज्ञ करते हैं। तो इसीलिए यहाँ भी हमें जो संतान चाहिए तो कहाँ से, भगवान की सेवा के लिए हम चाहिए। तो जो भी हम करते वो भगवान के संतुष्टि के लिए होना चाहिए, तो संतुष्टि के हेतु वो यज्ञ करते हैं। तो यह नाभि और मृदेव इसीलिए प्रार्थना करते भगवान उनको पुत्र के रूप में उनको चाहिए थे, इसलिए नाभि और मेरुदेव ऋषभदेव को बाद में उनको ऋषभदेव भगवान ऋषभदेव उनके पुत्र द्वारा स्वीकार करते हैं। तो यहाँ बताएं कि भगवान किस किस माध्यम से आप प्रकट होते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ भगवान स्वयं विग्रह के रूप में प्रकट हुए, जैसे हम राधा वृंदावन बिहारी श्री गौरांग महाप्रभु, राधा मदन मोहन ललिता देवी, ये जो विग्रह है ये भी क्या है, ये स्वयं भगवान है। क्योंकि हमारे हम कोई दिव्य दृष्टि से भगवान को देख नहीं पा सकते, हमारी भौतिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि भगवान को हम नहीं समझ सकते। क्योंकि अर्जुन को भी जब भगवान विश्वरूप दर्शन दिखाने वाले थे तो उस समय उनको ये उनको देखने की इच्छा है, अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मुझे आपको ये विश्वरूप देखने की इच्छा है। जो पहले भगवान दसवें अध्याय में भगवान पूरे विभूति योग के बारे में बताते हैं कि मेरी जो भी है सब कौन, मैं ही हूँ, ऐश्वर्य बता रहे। तो भगवान अर्जुन कहते हैं मुझे देखना है, तो अर्जुन भगवान कहते हैं कि ये मेरा रूप है, आपके भौतिक चक्षु से आप नहीं देख सकते, इसलिए भगवान को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और उसी दिव्य दृष्टि से अर्जुन भगवान का विश्वरूप देख पाते हैं। उसी तरह से अभी हम यहाँ हम ये विग्रह जो है उसको दिव्य नहीं समझ सकते, भौतिक चक्षु से हम नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान तो भी यहाँ करुणा के करुणा करके कृपावश यहाँ हमें कुछ लाभ देने के लिए अहितु की करुणा, यहाँ शब्द के अहितु की करुणा, अहितु की करुणा से भगवान प्रकट हुए। तो यद्यपि भगवान को यहाँ आने की जरूरत नहीं, लेकिन भगवान पति जीव के उद्धार के लिए इधर आ जाते। तो यहाँ पति जीव उद्धार के लिए वहाँ नाभि भगवान विष्णु यज्ञ के लिए उपस्थित हुए। तो ये भगवान का कोई निज स्वार्थ नहीं, तो यही भगवान प्रभुपाद लिखते कि मंदिर में भगवान आर्चा वगैरह के रूप में रहते खाली अहित की करुणा करने के लिए। तो ये बताए, तो ये उनका हमें दर्शन करना है तो दिव्य दृष्टि की जरूरत है। जब हम शास्त्र के द्वारा गुरु के माध्यम के द्वारा हम उनको समझ सकते हैं, क्योंकि ये विग्रह सच्चित आनंद है। प्रभात बताते हैं कि विग्रह सामान्य नहीं, ये सच्चित आनंद। सत मतलब शाश्वत, चित्त मतलब परिपूर्ण ज्ञान, आनंद मतलब परिपूर्ण आनंद। तो ये विग्रह ये हमें कैसे हमें आनंद देने वाले। हम जैसे भगवान को विग्रह देखते तो हमें क्या होता है, आनंद होता है। और उसको परिपूर्ण ज्ञान, तो ज्ञान के माध्यम से। और भगवान ये शाश्वत है, इसमें प्राण प्रतिष्ठापना विग्रह के रूप में भगवान स्थापन किया जाता है। तो ये विग्रह के बारे में, तो हम हमारे मर्जी से कैसे भी विग्रह नहीं बना सकते, कि कुछ जैसे बाहर अलग अलग तरह से कुछ मूर्तियां बनाते हैं, उनके मर्जी से उसको शेप देते, आकार देते, तो ऐसे नहीं। ये शास्त्र में बताया कि जो विग्रह जो है वो हमारे जैसा आचार्य विग्रह शिल्पकार जो बताए उसके शास्त्र के अनुरूप वो विग्रह बनाना चाहिए, या तो हमारे जो गुरु हैं आत्म साक्षात शुद्ध भक्त उनको जो साक्षात करके उनके कहने से विग्रह बनाना चाहिए, तो ये वो अच्छी तरह से हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं एक बार प्रपात के प्रपात प्रचार कर रहे थे, प्रपात ने तो पूरे जगत में भगवान को आर्चा विग्रह के रूप में स्थापित किया है। तो प्रपात के शिष्य थे, प्रपात उनको गोवर्धन के बारे में, गोवर्धन की जो लीला है, गोवर्धन जो भगवान ने गोवर्धन गिरिधार धारण किया, उनका उनको चित्र बनाने के लिए प्रपात कहते हैं उनको। तो वो चित्र बनाते हैं, तो कैसे देखते हैं वो, बोले गिरिराज गोवर्धन उठाया है, तो जो माता जी थी वो कैसे चित्र निकालते हैं, एक बहुत जैसे बॉडी बिल्डर जैसे ऐसे बड़ा शेप लेकर, तो उनकी तरह से इतना बड़ा ऐसा रूप धारण कर वो चित्र बनाते। तो प्रपात जब वो चित्र देखते तो प्रपात उनको कोई डांटते नहीं, लेकिन प्रपात उनसे कहते भगवान इतने ऐसे बॉडी बिल्डर की तरह नहीं है, भगवान कैसे बहुत कोमल है, एकदम सुंदर है, और उनका शरीर कैसे पूरा मक्खन के जैसे सॉफ्ट है, नरम है, और उनकी आँख ऐसे कमल के दल के जैसे, उसके चरण इतने सॉफ्ट रहते। तो ये भगवान उस समय वो पूरा वर्णन प्रपात उनके सामने करते हैं, उनके बाल कैसे घुंघरूलाल बाल हैं, उनके मुख कैसे एकदम बिंब फल के जैसे हैं, तो सब ऐसा प्रपात वर्णन करते हैं। तब वो माताजी बाद में इस वर्णन के रूप से गिरिराज गोवर्धन का अच्छा चित्र निकालते हैं। तो उसी तरह से जो शास्त्र में वर्णन किया है उसी वर्णन से हम भगवान के विग्रह बनाना चाहिए। तो यहाँ ये विग्रह के रूप में जो भगवान प्रकट होकर हमें क्या करते हैं, दर्शन देते, और इसी से हम उनकी सेवा करते। तो सेवा भी भगवान हमारे कैसे स्वीकार करते हैं, हमारे यहाँ हम भगवान को अलग से इतना बड़ा रूप, ये इतना दिव्य स्वरूप अपने चरम स्वच्छ नहीं देख पाते, इसीलिए भगवान इस रूप से हमें प्रकट होते हैं। इस प्रकट होने के बाद हम उनको हमारे से भगवान सेवा स्वीकार करते हैं। तो कैसे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमी भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्त्या प्रदम अष्टामी प्रयतात्मना, कि भगवान को क्या चाहिए, एक पत्र, एक तुलसी पत्र भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान खुश होते हैं, एक फूल, सुगंधित फूल भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान वो सेवा स्वीकार करते हैं, या तो भगवान को जो फल है भगवान को फल अर्पण करते हैं, कुछ नहीं तो भगवान को एक पानी, एक अर्घ्य अर्पण करेंगे तो भगवान वो संतुष्ट हो जाते। लेकिन क्या है, हमें प्रेम से भगवान को ये चीज अर्पण करना चाहिए। तो हमारे से हम कहाँ जा सकते हैं, भगवान तो सब सृष्टि में विराजमान है, तो उनको कहाँ भेंट चढ़ा सकते हैं, तो विग्रह के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, वहाँ हम अर्पण कर सकते हैं। जैसे हम देखते कि हम किसी को प्यास लगते हैं, जैसे कि देखते हम बहुत बहुत अभी घर में पानी रहता है, पाइपलाइन रहते हैं, तो पाइपलाइन में हम पानी हर जगह पे पी सकते हैं, अभी या आप किसी को प्यास लगे तो कहीं भी जगह पानी पी सकते क्या, या बहुत आते हैं भक्त तो पूछते हैं अभी हमें पानी पीना है, कहाँ पानी मिलेगा, तो उनको दिखते है उस वहां जाओ उधर पानी की व्यवस्था की, तो वहां से पानी के कहीं भी पाइप लेंगे अब पानी मिल सकते हम नहीं, तो उसके लिए एक जगह है कॉक लगाए उधर ही हम पानी पी सकते हैं, तो उस स्थान पर पानी मिल सकते हैं। तो कभी कभी नास्तिकवादी भी हमें प्रश्न सवाल पूछते हैं कि आप इस ये तो भगवान पत्थर है, तो यहाँ पत्थर की क्या है, तो बोलते हम तो बोलते हैं उनको भगवान तो सब जगह पे, तो हर जगह पे पत्थर है, तो सब जगह पे पत्थर पे हम पूजा करते क्या, तो वहाँ जगह प्रार्थना करते क्या, नहीं करते। तो हर कोई पत्थर से हम प्रार्थना नहीं कर सकते, हम क्या है जहाँ भगवान को विशिष्ट शास्त्र के अनुसार विग्रह स्थापन किया है, उसको प्राण प्रतिष्ठापना करें, उसका आह्वान किया है शुद्ध भक्त द्वारा, उसको प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उनको हम अर्पण करते हैं। ये है उस स्थान एक बनाए जहाँ हम जो जैसे पानी पीना का तो उस तरफ ध्यान किया था, वैसे भगवान को हमें अर्पण करना है, तो क्या भगवान विग्रह के रूप में यहाँ हमारे पास विराजमान है, ये बहुत बड़ी हमारी कृपा है। ये विग्रह ये कोई सामान्य नहीं, ये सच्चित आनंद रूप स्वरूप है। तो जैसे हम प्रार्थना करते उसी प्रार्थना से भगवान हमें आदान प्रदान करते हैं। या इनकी तो अनेक शास्त्र में वर्णन किया है, इसलिए उनको श्रीमूर्ति भी करते, इसमें बिल्कुल भी हम संशय करना नहीं चाहिए। तो ऐसे अर्चा विग्रह के जो रूप है अलग अलग रूप से हम धारण करते हैं। जैसे हम एक आठ प्रकार के हम विग्रह के धर्म स्थापन कर सकते हैं। जैसे एक शैली में एक पत्थर के रूप से, पत्थर के माध्यम से एक भगवान हम विग्रह बनाते हैं। हमें भक्त हमारे प्रभुपाद ने तो पूरे 108 मंदिर की स्थापना की और उसका विग्रह तो हर एक जगह पे प्रभुपाद ने इनकी स्थापना की। प्रभुपाद भी जैसे हम प्रभुपाद ने कुछ जगह पे हम जो वेस्ट इंडीज, तो उस स्थान पर वो प्रभुपाद कैसे करते, बोलते भगवान को श्याम वर्ण मतलब ब्लैक वर्ण काले रंग के भगवान स्थापन करते हैं। तो भगवान ऐसे दिखा रहे हैं कि प्रभुपाद तो उसमें वहाँ के सब लोग कैसे काले रंग के, तो भगवान वैसे विग्रह स्थापन करते, लोगों को थोड़ा समझ में आना चाहिए, तुरंत उसको स्वीकार भी करते और भगवान कैसे वर्ण से उनको उनको सेवा करने का माध्यम बन जाता है। तो हर एक जगह पे भगवान कैसे अलग अलग विग्रह के रूप में भी, तो अलग अलग रंग रहता, हमारा जो बचपन जो रंग रहता है, जैसे हमारा बचपन सा जो रंग रहता है वो हमेशा वही रंग रहता है, कोई चेंज होता क्या बीच में, तो भगवान के अलग अलग रंग के रूप थे। तो भगवान इसका मतलब क्या है, भगवान उनके भाव के प्रकट के उनके तरह से उस स्थान पर उसी तरह से प्रकट हो जाते हैं। दे भगवान का हमारे पर अहित की करुणा है, तो उसी से हम तुरंत भगवान से प्रेम करना चालू करते हैं। उसी तरह से हम दारुमयी मतलब लकड़े से बनाया हुआ भगवान के विग्रह, जैसे हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया ये भी भगवान के दारुकमय रूप में प्रकट हुए थे। और तीसरा है धातु, जो पंच धातु से हम बनाए जाते विग्रह, तो उनकी हम पूजा करते हैं अलग अलग, जो हमारी जो उत्सव मूर्ति रहते हैं या तो हम ललिता सखी विदिशा सखी या विग्रह के रूप में वो धातु के रूप में विराजमान है। तीसरा हम मिट्टी या गोबर से बनाते हैं, जैसे हम मिट्टी के गोबर से अलग अलग विग्रह, जैसे गोवर्धन पूजा आती है तो गोवर्धन पूजा के समय में वृंदावन में अलग है कि गोबर से गोवर्धन बनाते हैं, यहाँ भी कुछ ऐसे गोवर्धन के दिन ऐसे गोबर के ऐसे रखते और उस गोवर्धन का पूजा करते, तो मिट्टी से भी बनाते हैं, तो मिट्टी से भी हम भक्त कुछ हम देखते हैं मिट्टी के भी विग्रह बनाकर उनको स्थापन उसकी पूजा की जा सकते हैं। और पांचवा है लेखा, देखिए हम चित्र के रूप में, जैसे हम चित्र के प्रतिमा बनाते हैं, यहाँ भी देखिए हम सब कैसे चित्र बनाए, प्रभुपाद ने भी अनेक द्वारा शिष्य द्वारा उसको चित्र के रूप में प्रकट किए जाते हैं, तो ये भी भगवान के क्या है उस माध्यम से भी चित्रों को देखकर वो उसकी पूजा की सकते, तो हमारे बहुत से चित्र रहते, फोटो रहते हैं घर में, हम विग्रह नहीं लेकिन चित्र के रूप में हम भगवान की स्थापित करके उनको पूजा अर्पणा कर सकते, तो भगवान उसी माध्यम से भी हमारा सेवा स्वीकार करते हैं। छटाई की सैकति मतलब वालू, जो वालू के रूप से हम कभी कभी विग्रह बनाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कुछ जो हम समुद्र किनारे पट्टी जाते हैं तो वालू के विग्रह बनाते हैं। जैसे रामायण में देखते हैं कि भगवान शिव जी की पूजा करने के थी, रावण का वध करने के बाद सीता माता के साथ उनको भगवान शिव जी की पूजा करना है, तो उस समय हनुमान जी को शिवलिंग लाते लाते समय हो जाता है, तो उस समय सीता देवी सीता माता क्या करते हैं, एक वालू का शिवलिंग स्थापन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ये भी है, वालू के रूप से हम भी भगवान के विग्रह बनाए जाते हैं। तो वालू के विग्रह से हम बनाते हैं तो क्या होता है, वो तुरंत कभी भी मिट जाते हैं, तो जितने समय हम तब तक हम क्या करते हैं, आह्वान करके उनको स्थापन करके बाद में उसको भगवान को बोलते अपने अपने स्थान पर विराज मानो, तो वापस वो वालू अपने अपने इसमें रीति में मिक्स हो जाते हैं। तो वालू के रूप से माध्यम से भी हम भगवान के विग्रह बनाकर उनको उनकी सेवा हम स्वीकार कर सकते हैं। और सातवां है मनोमय। तो अभी कभी कभी देख रहे हैं हमको बहुत भक्तों को हमें समय नहीं है, इनके विग्रह की पूजा करने के लिए समय नहीं है, और दूसरा है कि हमारी परिस्थिति नहीं, कुछ गरीब भक्त हैं तो हम इतने विग्रह कितना ला सकते हैं, कहाँ से ला सकते हैं, पूजा कैसे कर सकते हैं, इतना हमारे पास सामग्री नहीं, इतना भगवान को भोग लगाना है आदि, कभी कभी गरीब रहते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, हम मनोमय मन में भी हम भगवान की पूजा करेंगे, मन में भी उसको अर्पण करेंगे तो भी भगवान वो स्वीकार करते, तो भी हम भगवान क्या करते हैं, हमारी पूजा स्वीकार करते। मन में हम खाना बना भगवान को अच्छे अच्छे भोग बनाएंगे मन में, तो भी भगवान वो स्वीकार करते, मन में आरती करेंगे तो मन से भी प्रार्थना करेंगे, तो ऐसे भगवान वो भी सेवा करते हैं। और आठवां है मणिमय। मणिमय मतलब मणि से, जो अलग अलग स्टोन रहते हैं हीरे मानिक मोती से भी हम भगवान के विग्रह बनाए सकते। तो प्राचीन काल में ऐसे बड़े बड़े वहाँ से गोल्डन से या मणि मानिक मोती से भी भगवान के विग्रह बनाए जाते थे। लेकिन ऐसे विग्रह अभी बनाएंगे तो क्या हो सकता है, उनके ऊपर बहुत आक्षेप आएगा, तो ऐसे भी बहुत नास्तिकवादी लोग वो हमें ऊपर आक्षेप देते, आप इतना भगवान के इसके विग्रह पर कितना खर्चा करें, इतना ड्रेस क्यों करें, इतना अच्छा अच्छा श्रृंगार करने की कितना ज़रूरत है, इसी से आप क्या करो, इन पैसे से गरीबों को दान दे दो, ऐसे बेचते आक्षेप लेते ऐसे, तो ऐसे मन से ऐसे बनाएंगे तो उनका और ज़्यादा आक्षेप आएगा, तो उनको समझ में, इसीलिए अभी उतना नहीं कर सकते। तो ऐसे तरह से हम देखते हैं भगवान के अलग अलग विग्रह के द्वारा हम स्थापन करके उनकी पूजा स्वीकार करते भगवान, मतलब ये इनके माध्यम से भगवान यहाँ हमारे हमारे भक्त के लिए प्रकट हो रहे हैं, हमारे से कृपा करने के लिए, सेवा करने के लिए, तो ये हमें बता दे। इसीलिए तो अभी हम कुछ उदाहरण देके हम समझ सकते कि कैसे मन में भगवान स्थापित कैसे हुए थे, तो कैसे हमारे स्वीकार करते, ये हम समझना चाहिए। तो भौतिक संसारी जो लोग हंसते रहते हैं उनको थोड़ा समझ में नहीं आता है कि ये भगवान विग्रह के रूप में, उसको मायावादी कहते हैं, नास्तिकवादी कहते हैं, वो एक्सेप्ट स्वीकार नहीं करते, और भगवान उनके लिए पत्थर बन जाते हैं, जैसा उनका भाव है उसी तरह से भगवान उनको प्रकट होते हैं। ऐसे नहीं उनको ऐसा है क्यों नहीं देखे भगवान के, ये यथा माम प्रपद्यन्ति तान सतय भजाम, हम जिस भाव से भगवान के पास जाएंगे उसी भाव से हमारे पास भगवान प्रकट होते अप्रकट होते। तो भगवान ने भी गीता नवे अध्याय में कहते हैं सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मतस्मृतिर्ज्ञान अपोनम च, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और मुझे जो स्मृति विस्मृति आ जाती है। तो भगवान को हम भूलना चाहेंगे तो भगवान हमें भुला देंगे, हमारे मन में उसे तार्किक दृष्टिकोण से आ जाएंगे, लेकिन भगवान को हम याद करना चाहेंगे तो भगवान हमें उसी तरह से हमें उनको याद कर सकते हैं। स्मृति और स्मृति, ये भगवान और भगवान हमें प्रकट हो जाते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि मन में कैसे स्थापन कहते हैं, तो दक्षिण भारत में एक गरीब भक्त थे, ब्राह्मण थे, वो भी क्या करते हैं, उनको अभी इतना ये करने, तो अर्चा वगैरह की पूजा नहीं कर सकते, इतना सामग्री नहीं है, इतना भोग लगाने समय नहीं है, तो वो परिस्थिति ने अपनी, तो वो अपने मन से ही पूजा करने चालू करते हैं, मन से। तो मन से पूजा करने से, मन से सोच रहे कि यहाँ से मार्केट से अलग अलग तरह की सब्जियाँ लेके आ गए, बाद में उसको अच्छी तरह से साफ किए, उसको कटिंग किए और उनको भोग लगाना चालू किया। एक एक भोग बनाना चालू करते, अलग अलग तरह से व्यंजन बनाते, अंत में वो क्या करते, अच्छी तरह से खीर बनाना है तो दूध उबालने रखते, दूध उबालते उबालते मन ही करे सब, और अंत में बोला भी दूध कितना गर्म हो गया है वो देखना है, उसके बाद में चावल और शक्कर डालना है। तो उस समय वो भक्त क्या करते हैं, वो दूध में ऐसी उंगली डालते हैं, तब तो उनका वो स्वप्न भंग होता है और देखता है तो सचमुच उनकी उंगली जली जाती है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि तो उनके भगवान की उंगली जल गई, मतलब भगवान ने जो मन में वो पूजा किया वो भगवान ने वो उनका स्वीकार किया। तो मन से भी हम पूजा करते तो भगवान ये हमारा स्वीकार कर देते हैं, ये अर्चा हम समझना चाहिए। तो इसीलिए हमारा क्या चाहिए, भावना चाहिए, अपना जो भाव है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद लिखते कि हमारे संस्था की स्थापना है कृष्ण भावनामृत संघ, तो महत्वपूर्ण है हमारा भाव, हमारा भक्ति भाव, भाव चाहिए हमारा, ये रहेगा तो ही स्वीकार करते, हमारा भाव ही नहीं तो भगवान नहीं सकते। तो यहाँ हम मंदिर में रहते ही हुए भी कभी हम हमारा मन इधर उधर भटक जाएगा, हमारा इधर सेवा कर रहे लेकिन मन हमारा अलग जगह पे, तो सेवा स्वीकार नहीं हो सके। लेकिन हम यहाँ नहीं है लेकिन हम कहाँ बाहर है, बाहर कुछ रहते और वहां हम याद करते भगवान की पूजा के लिए आ रहे, मंदिर में जा रहे, या के वृंदावन मन से घूम रहे, तो भी भगवान उनका सेवा स्वीकार कर देते ऐसे। तो हमारे गुरु महाराज से हम देख सकते कि हम यहाँ तो कुछ पूछते कि हम कैसे भगवान को, कभी हम इधर रहते वृंदावन में या जीव में उनके धाम में जाते हैं, लेकिन वहाँ हमेशा हम नहीं रह सकते, तो वहाँ से हम आ जाते बाहर दूसरी जगह पे, घर पे आते हैं, ऑफिस में जाते हैं, अब उनका अपना जो कार्यकाल उधर जाते हैं, तो वहाँ हम हर दिन मंदिर में नहीं आ सकते। उस समय मन से ही परिक्रमा करना चाहिए, मन से वृंदावन में जाना चाहिए, तो हम उसी से परिक्रमा हो सकते, वो भगवान वो पूरा सेवा स्वीकार करते हैं। तो हम जो हम प्रभु जी से, गौराम प्रभु जी, और हमने यहाँ से सुना है सब कि हमारे गुरु महाराज राधानी स्वामी महाराज तो वृंदावन में यहाँ आने के बाद भगवान के खोज में के लिए इधर आ गए और अंत में वृंदावन में रह गए। तो यहाँ से जाने के बाद महाराज जब अमेरिका गए तो उसमें महाराज सोच रहे कि मैं कभी वृंदावन में भूल जाऊंगा तो ये कैसा हो जाएगा। तो महाराज गुरु महाराज क्या करते, हर दिन प्रसाद लेने से पहले कम से कम आधा घंटा मन ही मन पूर्ण वृंदावन की परिक्रमा करते थे। जैसे मन ही मन हो अभी यमुना में सुबह उठते नहाए, उसके बाद में दर्शन करेंगे, मदन मोहन जी का दर्शन करेंगे, वहाँ से राधा श्याम सुंदर दामोदर ऐसा सब का दर्शन करते करते गोवर्धन का परिक्रमा के, जो भी पूरा पूरा परिक्रमा करने के बाद महाराज प्रसाद लेते थे, तो मन ही मन। और यहाँ से महाराज ने वृंदावन के जो मिट्टी लेके थे हमेशा उसको अपने साथ ही रखते थे, उनका दर्शन करते, उनका सुनते थे। तो जैसे तो वही गुरु महाराज के जो मन ही मन करते थे। बाद में महाराज वहाँ से वेस्ट विरजन जो न्यू वृंदावन है वहाँ सेवा थी, वहाँ से महाराज के मन में था इधर आने के बाद। तो ये प्रभुपाद की इच्छा थी हर जगह पे वृंदावन की स्थापना करना चाहिए। तो वही वृंदावन यहाँ महाराज ने अंत में अपने भक्तों को विनती किया मुझे वृंदावन की बनाए। तो कभी महाराज ने उनके भक्त सब कहते कि कैसे हम प्रभुपाद की इच्छा तो वहाँ नहीं पूर्ति होगी, अंत में ये बोलते एक वृंदावन की यहाँ स्थापित करके दे दो। तो सब भक्त सोचते महाराज ने कभी जीवन में हमें ऐसे कोई मांगा नहीं, तो हमको महाराज अपने गुरु की इच्छा पूर्ति के लिए सारे उनके शिष्य उन्होंने क्या किया एक छोटा सा वृंदावन बना के दिया। और ये वृंदावन भी क्या किया गुरु महाराज ने प्रभुपाद को समर्पित किया, ये प्रभुपाद की इच्छा थी। तो यहाँ भी मन में महाराज ने वृंदावन लिखे गए थे, वहाँ से वेस्ट विरजन भी सेवा किया, यहाँ भी उनको वही वृंदावन स्थापन किया और उसी तरह से यहाँ सेवा भी चल रहा है अच्छा। और तुरंत वृंदावन बनाने के बाद एक साल सेवा होने के बाद यहाँ स्वयं गिरिराज गोवर्धन भी आके, तो ये भी गुरु महाराज को एक ब्रजवासी ने गिफ्ट किया। तो भगवान स्वयं भी आके गिरिराज गोवर्धन तो ये स्थापन किया, तो उनके मन में जो रहते पूरा सेवा स्वीकार करते। तो यहाँ देख रहे कि गुरु महाराज ने जो साक्षात यहाँ स्थापन तो किया है, स्वयं भी आ गए, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। तो यहाँ हम तो हर दिन रहते हैं, तो हमें तो अनुभव आ रहे हैं, लेकिन यहाँ हर दिन जितना भी अतिथि आ रहे हैं देखने के लिए दर्शन के लिए, तो बाहर की जगत में आने के बाद या घूमने के बाद वो स्वयं कहते ये जगह कुछ अलग ही है, यहाँ कुछ लग रहा है कुछ अलग से शक्तियाँ है इधर और हमें बहुत आनंद के अनुभव होते हैं। तो उसने पहले सुना भी नहीं है लेकिन जैसे आते देखते तो उनको समझ में आता है, और जाते वक्त हर एक का अनुभव रहता है कि यहाँ स्वयं भगवान विराजमान है या स्वयं वृंदावन प्रकट हो गए। तो ये सब अहित की कृपा है, ये प्रभुपाद की गुरु महाराज की और सारे वचनों की या कृपा हो गई। तो ये उनकी इच्छा थे, तो हमारे कुछ पात्रता नहीं है लेकिन गुरु की कृपा से भगवान की कृपा यहाँ प्रकट हो गए। तो उसी तरह से अलग अलग रूप के द्वारा से भगवान यहाँ हमारा सेवा स्वीकार कर रहे हैं, तो हम समझना चाहिए भगवान कैसे कहे हमें स्वीकार करते हैं। दूसरा है कि एक बार विग्रह कैसे स्वयं रहते हैं कि चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है कि मुकुंद दास, मुकुंद दास एक भक्त थे, तो उनका वो डॉक्टर थे वैद्य थे, तो वो एक राजा के सेवा में जाते थे। तो जब राजा में सेवा में जाते थे तो एक दिन क्या होता है जो राजा का सेवक है वो अपने मोर पंखा से उनको हवा दे रहे, तो वो मुकुंद दास भगवान के भक्त है, वो जैसे वो मोर पंखा से उनको राजा का हवा करे देखते ही वो मूर्छित हो जाते। तो राजा और सेवक अरे इनका तो अच्छा ही तबीयत था लेकिन अभी तुरंत कैसे वो मूर्छित बन गए। तो उस समय वो अपने होश में आने के बाद राजा पूछते हैं ऐसे कैसे हो गया, आप बताओ क्या हुआ था। तो बता देने जो भक्त रहते उनका अष्टविकार भाव जागृत हो गया लेकिन वो अपना महिमा बता देने खुद, तो समझ जाते ये कौन है भगवान के भक्त है इसलिए उनको मोर पक्का देख के उनको ऐसा भाव आ गया। तो मुकुंद दास उनके बेटे थे रघुनंदन, तो रघुनंदन तो एक बार वो वैद्य तो अभी भगवान को भोग लगाने का समय, भोग लगाने के समय एक व्यक्ति आता है कि एक आदमी बहुत बीमार पड़ा है कृपया करके आप जल्दी आइए। तो ये वैद्य का सेवा रहती है डॉक्टर का सेवा इमरजेंसी रहता है तो उसको उस समय तुरंत जाना पड़ता है। तो भगवान को भोग लगाने के समय भी तो अपने बेटे को कहते हैं रघुनंदन कृपया करके आप भगवान को भोग लगाए। तो रघुनंदन जो है वो मासूम है, वो क्या करते भगवान को भोग लगाने जाते हैं, अब भगवान को भोग लगाते समय प्रार्थना करते तो उनको उनको लगता है भगवान हम जैसे लेते उसी जैसे भगवान खाते हैं, तो बोले भगवान खाते ही नहीं। तो भगवान को प्रार्थना करते कृपया करके आज आप क्यों नहीं खा रहे कृपया के आप ले लो, तो भगवान उससे प्रसाद खाते। और जो मुकुंद दास भक्त आते हैं उनके पिताजी आने के बाद कहते हैं रघुनंदन अभी चलो आप भूख लग निकाला ना, हमें बहुत भूख लगे, हम दोनों बैठ के तुरंत भोजन ले लेंगे, प्रसाद लेंगे। बोलते ना भगवान, वो तो भगवान ने खा लिया। तो बोले कैसे खा लिया? तो उनको दोनों भी अटे, एक तो या ये बच्चा बासम ने, इन्होंने खाया होगा, और कहते हैं या तो उनको लगता है सचमुच भगवान ने खाया होगा, तो वो उनका विश्वास बढ़ जाता है, तो वापस कह लड्डू बनाते, और लड्डू बना के कहते हैं आप जाके उनको फिर से खिलाओ। तो फिर से जाते हैं, वो पर्दे के नीचे से देखते, बाद में भूख लगते उसमें आधा लड्डू खाया था। तो भगवान हम कैसे विग्रह के रूप में उनका हम कह भगवान वह सेवा स्वीकार कर दें, ये हम बताएं। तो ये ऐसे चैतन्य चैतन्य चरितमृत क्या है। और उसी तरह से और एक लीला आते चैतन्य चरितमृत कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास दीक्षा लेने वाले थे, तो उस समय वो अंबिका कालना जाते हैं। तो अंबिका कालना जाते हैं, उनके भक्त थे गौरीदास पंडित। तो गौरीदास पंडित को बताते अभी हम संन्यास दीक्षा संन्यास लेने वाले। तो गौरीदास पंडित को बहुत विरह होता है, चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेंगे तो हमें वापस उसका दर्शन नहीं मिलेगा, वो घूमते रहेंगे, हमारा उनका संग नहीं मिलेगा। तो वो बहुत गौरीदास पंडित विरह में जाते हैं, भगवान आप ऐसी तरह से नहीं जा सकते हमें छोड़कर, तो आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं नीम के विग्रह बनाते हैं, चैतन्य महाप्रभु गौर निताय के, नीम के दोनों चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का विग्रह बनाकर उनको देते, ये आप उनको रखो और ये हम ही है तो रखो। तो गौरीदास पंडित नहीं नहीं ऐसे नहीं, आप ही मत जाओ। तो बोलते मैं और विग्रह कुछ अलग नहीं, आप तो सारे वैदिक ज्ञान जानते हैं भक्ति का, मैं मेरा नाम रूप गुण लीला और विग्रह कुछ अलग नहीं। तो गौरीदास पंडू कहते हैं कि ठीक है, तो आप यारो विग्रह जाएंगे? तो भक्त चतुर रहते ना ऐसे बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कहने से वो क्या करते हैं, ठीक है, तो विग्रह चलने लगते हैं, और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु विग्रह में वापस बनते, विग्रह चलने लगते। तो गौरीदास पंडित नहीं नहीं आपने हमारे से कुछ चीटिंग किया है, तो आप क्या करो, नहीं नहीं वो नहीं, तू वापस उनको बोलते आपने आप रुक जाओ। तो वो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु एक बार वापस वो विग्रह के रूप में आ जाते हैं, और जो विग्रह वो चलने लगते हैं। तो इस दो तीन बार ऐसा हो जाता है, तो भगवान वो दिखा रहे कि मैं विग्रह और मैं कुछ अलग नहीं हूं। अंत में गौरीदास पंडित भगवान को स्वीकार करते हैं, ठीक है विग्रह के रूप में। तो गौरीदास अंबिका कालना में ये जो विग्रह गौरीदास पंडित नित्यानंद प्रभु और गौरांग महा गौर नित्य के विग्रह, वहां अभी भी जो भगवान को भोग लगाते ना, तो ज्यादा दर्शन ज्यादा नहीं रखते, तुरंत बाद बाद में मन कल्टर बंद करते, अर्थ बंद करते, इसीलिए कि वो भगवान किसी के प्रेम में उसने वास तुरंत चलने लगेंगे। तो गौरीदास मंदिर हमेशा तुरंत थोड़ी समय दर्शन करने हो तुरंत खोल देते। तो वह हम रूप रघुनाथ प्रभु जी के साथ यात्रा लेके गए थे, उस समय यहाँ के बच्चों ने ड्रामा किया था गौर निताई का, बहुत अच्छा किया, तो वहां से उनके बहुत प्रजा खुश हो गए। वो बारम्बार बंद कर देते, खोलते थे बंद करते थे, क्योंकि आपके भक्ति के प्रेम से भगवान यहाँ से चले गए जा सकते चलते उधर, इसीलिए वो बारंबार करते ये विग्रह की, या अभी तक बहुत आदान प्रदान करते अंबिका कालना से। और ये देखा है कि उसे हम देखते हैं सनातन गोस्वामी या मदन मोहन जी के जो विग्रह हैं, ये साक्षात या भगवान के मदन मोहन की तो अनंत लीला हो गई, हम कैसे कैसे विग्रह के रूप में प्रकट हो गए, मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ ये सारे विग्रह भगवान के पोते के पुत्र वज्रनाभ ने 5,000 साल पहले विश्वकर्मा को बुलाकर इन विग्रह की स्थापना की। तो मदन मोहन ये जो संबंध विग्रह जो जीव और भगवान का जल्दी संबंध बन जाता है, तो वहाँ से कैसे कैसे प्रकट हो गए। तो हम देखते हैं कि जो मदन मोहन है अद्वैत आचार्य के प्रार्थना से उनको गोकुल महावन में उनके प्रकट हो गए, और वहां से जैसे चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हो जाता है, भगवान चैतन्य महाप्रभु पश्चिम बंगाल मायापुर स्थान पर प्रकट हो गए, उस समय सनातन अद्वैत आचार्य इन मदन मोहन को पुरुषोत्तम चौबे, मथुरा के पुरुषोत्तम चौबे थे, उनके पास सौंप देते। तो भगवान वहाँ विग्रह के रूप में है, लेकिन वहाँ मदन मोहन विग्रह से बाहर आकर जो पुरुषोत्तम चौबे के जो पुत्र थे सदन, उनके साथ आकर खेलते थे। विग्रह से बाहर आकर वो मदन सदन के साथ खेल खेलते थे। और कभी कभी भगवान अपना खेल खेलते हुए अपना उनके ऊपर कुछ खेल में क्या है, एक दूसरे का दाव रहता है, तो सदन का दाव रहता है, भगवान का दाव रहता है, वो खेलेंगे और सदन का दाव के भगवान भागकर वापस विग्रह के रूप में स्थापन होंगे। तो सदन हमेशा कहते थे, भगवान मेरा आज दाव जो है, हमारा खेल आपने अधूरा छोड़ दिया, कल मुझे वापस देने खेलने के लिए आना है। तो ऐसे उनके भगवान आदान प्रदान कर देते। और सनातन गोस्वामी जब आए वृंदावन में, वो देख रहे हैं कि वृंदावन के यमुना के किनारे ये जो बालक है बहुत सुंदर दिख रहा है, तो उनके बहुत आकर्षित होते हैं। और उनके पीछे पीछे जब सनातन गोस्वामी जाते तो वो पुरुषोत्तम चौबे के घर में विग्रह के रूप में बहुत सही, तो स्वयं भगवान है। इसलिए सनातन गोस्वामी जी हर दिन परिक्रमा करते वृंदावन की, तो उस समय वो पुरुषोत्तम चौबे के घर में हर दिन जाते थे और उनको दर्शन करते आते। तो एक दिन वो देखते कि वो माता एक बाजू में अपने दातुन कर रहे और दूसरी बाजू से क्या कर रहे, खाना बना रहे, भगवान को भोग लगा रहे, बना रहे। तो क्यों, बच्चों को बहुत भूख लगती है तो जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है, तो माता जल्दी बन रही। तो सनातन गोस्वामी उनको कहते कि आप उनको ऐसे नहीं बना सकते, वो हम सोने के बाद हम क्या जैसे उठते हम सुचिरभूत होना चाहिए, नहाना चाहिए, नहाने के बाद खाना बनाना चाहिए। दूसरे दिन क्या होता है, बहुत देर होते हैं, तो भगवान और मदन और सदन दोनों रोने लगते हैं, हमें खाने के लिए बहुत भूख ले, जल्दी जल्दी दे दो। तो माँ से बच्चे ऐसे और सुबह सुबह परेशान करते, तो मदन सनातन को समय देखते हैं तो कहते कि वो देखकर भगवान सनातन को समय बहुत दुख होता है कि भगवान को क्या हो रहा है, देर हो रही है उनसे। तो बोले आपको, आप नई नियमों का पालन करेगा चलेगा, लेकिन उनको जल्दी खिलाओ। तो विग्रह कैसे क्या आकर भगवान के अलग अलग भक्तों से सेवा करते, तो उसके हिसाब से समय बहुत कम है। तो वहाँ से हम अंत के मदन मोहन जी का लीला सुनाते कि भगवान कैसे उनके बाद से वो सनातन गोस्वामी के पास आते हैं। और उस समय भी भगवान को सनातन गोस्वामी कहते कि मेरे पास आएंगे तो मेरे पास को आपको खिलाने के लिए कुछ नहीं, तो मैं क्या दे सकता हूँ। तो भगवान कहते आपके जो भी है वो मैं आप दूंगा, मैं खाऊंगा। तो हर दिन सनातन गोस्वामी उसको बाटी, एक आटे का एक और बिस्तर के रखा उसको सेक कर देखते, उसको कहते बाटी। तो भगवान एक दिन कहते भगवान कि आप मुझे ऐसे ही बाटी दे रहे हैं, उसमें कुछ नमक भी नहीं रहता है, बाकी तो कुछ नहीं, कम से कम नमक तो डालो। तो वो भगवान सनातन को आज आप नमक मांगेंगे, कल आप शक्कर मांगे, घी मांगे, तो मैं कहाँ से लाऊँ, इसलिए मैंने बोला था आप मेरे पास नहीं आएंगे तो अच्छा होगा, तो जो है आपकी व्यवस्था आप ही करो। तो मदन मोहन क्या रहते, उस समय एक जो व्यापारी था उसका जो जहाज वो उधर फंस जाता है, तो मदन मोहन वहाँ भगवान स्वयं बालक के रूप में वापस वो उनके पुकार ने मेरा जहाज को मदद कीजिए। तो वो बालक है, वो कहते ऊपर सनातन बाबा बैठे हैं, उनसे वो बता कराइए। तो वो जाके प्रार्थना करते हैं उनसे, मेरा जहाज निकाल कर दे दो। लेकिन वो कहते आप मदन मोहन से प्रार्थना करो, वो मदन मोहन से प्रार्थना करते हैं। तो मदन मोहन से प्रार्थना करने के बाद फिर से सनातन गोस्वामी कहते मैंने भगवान से प्रार्थना की है। तो वो कहते कि ठीक है आपने प्रार्थना किया है तो उन्होंने सुना, अभी आपका जहाज निकल गया होगा, ले आपके जहाज में कुछ नमक है क्या, तो हाँ नमक है, उनको नमक ला कर देता हूँ। तो उसी तरह से भगवान कैसे अलग अलग विग्रह के रूप में उनकी सेवा करते। उस समय उसके बाद में जो मदन मोहन औरंगजेब का आक्रमण जब हुआ, उस समय जयपुर के राजा मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ को जयपुर लेके गए, तो वहाँ भी भगवान कैसे लीला करते, जो राजा जयसिंह की जो बेटी थी बचपन से उनकी सेवा करती थी मदन मोहन की। और जब सेवा करते तो जैसे बेटी की शादी होती है उनको कहाँ जाना पड़ता है? ससुराल। ससुराल जाते समय वो मदन मोहन का दर्शन करते, उनको मिलने जाते हैं, तो कहते हैं कि हे भगवान, आपके बिना मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मेरे साथ चाहिए मदन मोहन। तो राजा और पुजारी उन बेटी की परीक्षा करते, उनके आँख के ऊपर पट्टी बांधकर उनके सामने अलग अलग 10 विग्रह रखते, उसके बीच में मदन मोहन रखते और कहते इसको पहचानो। तो कैसे पहचानेंगे? तो राजा जयसिंह की बेटी भगवान से प्रार्थना करते, हे भगवान कृपया करके मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मैं आपको कैसे पहचान सकती हूँ। तो भगवान परम दयालु है, भगवान उनको आवाज़ देते, भगवान जिसका आवाज़ देते उसको ही जाता है, दूसरे को नहीं जाता है। तो भगवान को आवाज़ देते, जैसे तुम मुझे स्पर्श करेंगे मैं हिल जाना जाऊँगा, आपने मुझे पकड़ना है। तो उसी श्रद्धा से एक एक विग्रह को हाथ लगाते लगाते जाते, जैसे मदन मोहन का हाथ लगाते, मदन मोहन एक हाथ नीचे करते, तो भगवान की बांसुरी टूट जाती, भगवान हिल जाते और वो जयपुर जो कन्या वो उसको पकड़ लेते। तो उसके जैसे उनकी बांसुरी, आप देखेंगे मदन मोहन का विग्रह के बांसुरी कैसे टूट गए, और उसी मदन मोहन जी को उनके साथ साथ जाते भगवान, उनके साथ करौली बनकर भगवान उनके साथ जाते, से उनको उनके ससुराल का गांव का नाम पढ़ते विग्रह। जैसे अनंत लीलाएं भगवान विग्रह के रूप में प्रकट करते, तो उसी तरह से हम क्या करना चाहिए, उनकी सेवा स्वीकारना चाहिए। हम यहाँ जो विग्रह जो बने प्रपात और गुरुमार्ग की कृपा से, उनको ये कई पत्थर नहीं समझ नहीं, साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का सेवा है प्रकट हो गए, उनकी हम उसी श्रद्धा भक्ति से प्रार्थना करना चाहिए, उनको पुष्प अर्पण करना चाहिए, तुलसी दल अर्पण करना चाहिए और उनको अर्घ्य अर्पण करना चाहिए, तो हम स्वीकार करें। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण।